नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस लाइव प्रस्तुति में। हमारे साथ आप कर रहे हैं 21 दिवसीय योगा चैलेंज, यानी 21 डेज के लिए हम योग को उसके सही आयामों में और संपूर्ण तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रस्तुति का नाम है संपूर्ण योग। इस कार्यक्रम में हम यही कर रहे हैं कि योग के फिजिकल डायमेंशंस को, उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को और उसके इमोशनल और मेंटल वेल्थ के हेल्थ बीइंग के एस्पेक्ट्स को हम समझ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और पहले करते हैं फिजिकल योगा। हर दिन की तरह आज भी हम योगासना करेंगे और हमारे साथ योगासना सिखाने के लिए होंगे हरीश वैद्य जी, जो बड़ौदा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चलिए सभी हो जाइए तैयार और हम सब मिलकर इकट्ठा करते हैं आज का योगासन।
ओम शांति, वंदे मातरम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। आपका दिन शुभ हो, आरोग्यमय हो, भगवान की दुआएं निरंतर आप पर बरसती रहें। अच्छा, अभी आसनों के सिलसिले में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम अभ्यास करेंगे शशकासन का, फिर भुजंगासन का, उसके रिलेटेड जो भी आसन है वो भी आप देख लेंगे। सबसे पहले आप एक शतरंज बिठा के जमीन पर बिछा करके जमीन पर बैठ जाइएगा और शुरू से ही वज्रासन में आ जाइएगा। ये वज्रासन में लंबे समय तक बैठना बहुत जरूरी होता है एकाग्रता के लिए। वैसे फिर हमारे मणिपुर पर थोड़ा प्रेशर देने के लिए फिर मणिपुर चक्र जो है वो नाभि के पास है, नाभि के पीछे। फिर जिनको गर्भाशय के प्रॉब्लम है, पेट की तकलीफें है, पाचन बिल्कुल जिनका कमजोर है, जिनको लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर की गतिविधियां थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, जिनको किसी भी कारण से आंतों की जो सर्पाकार गति है वो रुक गई है, मोशन को आगे जाने के लिए जो गति चाहिए वो नहीं मिल रही है, फिर जिनका मूलाधार चक्र वीक हो गया है, उन सब के लिए, फिर जिनकी एकाग्रता कम हो गई हो, जिनका मस्तिष्क थोड़ा डीम हो गया हो, जिनको पार्किंसन के प्रॉब्लम हो, जिनको कान के अंदर तकलीफ हो, जिनको गले में तकलीफ हो, जिनका अनाहत चक्र डिस्टर्ब हो गया हो, उन सब के लिए एक आसन ऐसा है जो हर किसी हालत में आपको फायदे कराएगा। अच्छा, वज्रासन में आ जाइए आप। इसको शशकासन कहते हैं, कोई इसे शशांकासन भी कहते हैं। शशक माना खरगोश, उसके जैसा आसन है। बिल्कुल वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, बिल्कुल खींचे ऊपर की ओर, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला रखे। अब सांसें छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे आइए, हाथ ऐसे घिसते घिसते दाढ़ी जमीन से चिपका के सामने की ओर देखना है। इससे देखिए लगभग लगभग सभी चक्रों में और पेट में इसका प्रेशर क्रिएट होता है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, अभी सांसें भरते भरते आप ऊपर आएंगी, रिलैक्स। देखिए ये वज्रासन है, पैर इसमें जितना हो सके आप फैला सकते हैं और फिर से इस बार ऐसे ऊपर खींचते हुए नीचे झुकते हुए आपने दाढ़ी जमीन से चिपका के सामने देखना है और सांसें भरते भरते ऊपर आना है। देखिए हर किसी के शरीर की कुछ ना कुछ मर्यादाएं होती हैं, सभी पूर्ण होते ऐसा मान लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आपने शशकासन किया, इससे आप देखिए आपको आराम बहुत मिलेगा। अगर आप थक के आए हुए हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा चिंतन चलता है, ऑफिस में कुछ गर्मा गर्मी हो गई, परिवार में कुछ गर्मा गर्मी हो गई, आप बिल्कुल लाचार हो गए, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो बिल्कुल इस आसन में रहें, आपको आराम मिलेगा, आपका कई बार आज्ञा चक्र भी आप जमीन से चिपकाओ, वैसे तो दाढ़ी चिपकानी होती है, दाढ़ी और एड़ी का एड़ी होती है उसका कोई ना कोई संबंध है, इसलिए आपके स्ट्रेस और टेंशन को ये हटा देगा। तो ये आपने आज सीखा शशकासन। शशकासन बहुत ही बेहतरीन आसन है स्ट्रेस के लिए। अच्छा, इसी आसन से जुड़ा एक और आसन है, वो है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध चक्रासन में भी आप बैठ सकते हो, अर्ध उष्ट्रासन भी हो सकता है। आपने देखा कितनी आसानी से ये सारे आसन होते हैं, लेकिन नीचे झुकने में थोड़ा ध्यान रखना, किसी का सपोर्ट मत लेना, नहीं तो कोई ऊपर से दबा देगा तो आपकी पसलियों में, आपकी रीढ़ की हड्डियों में नुकसान हो सकता है। हो सके तो दाढ़ी चिपकाना, जिनका पेट बहुत बड़ा है, भारी है, वे लोग तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ करो तो सब संभव है। भगवान भी अगर ढूंढने से मिल जाता है तो तंदुरुस्ती भी तो आम है, बिल्कुल आपको मिल सकती है। शिव बाबा की सदा दुआ आप पर बरसती रहे, भगवान की हजार हाथ आपके सिर पर रहे, ये शुभकामनाएं। और मैं मेरी भारत भूमि को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज के विषय के समापन की आज्ञा चाहता हूँ। अस्तु, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश वैद्य जी का, और साथ में ऋतु जी थी जिन्होंने आज हमें शशांक आसन सिखाया, और हम सभी इस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और सभी के लिए आसान होगा। और किन चीजों का ध्यान रखना है, जिनके शरीर में कहीं पर खिंचाव है, कहीं पर किसी लोगों के लिए तकलीफ हो सकती है, तो वो भी हरीश वैद्य जी ने बताया। तो चलिए दोस्तों, आज के योगासन के पश्चात हम अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं, हमारे कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यानी हर दिन योग के अष्ट अंगों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें यम नियमों को हमने समझा। उति पतंजलि ने जो चीज बताई है उसमें योग के लिए सिर्फ योगासन ही काफी नहीं है, सिर्फ आसन ही नहीं, सिर्फ प्राणायाम ही नहीं, मगर योग के अलग अलग आयामों में यम और नियम है। यम को तो हमने पिछले 5 दिनों में अध्ययन कर लिया था और नियमों के विषय पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, और आज एक नए नियम पर हमारा ध्यान खिंचवाने के लिए, इस पर बोध देने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज की यूरोपीय देशों की निदेशिका राजयोगिनी सुदेश दीदी जी लंदन से आज खास हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। तो चलिए चलते हैं उनके पास और सीधे लेते हैं आज का बोध। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका।
नमस्कार
दीदी, हम सब योग के बोध में जी आपसे सुनना चाहेंगे, आप कृपया आज के विषय पर प्रकाश डालें।
योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में एक विशेष मुद्रा शुचि मुद्रा है, शुद्धि है। अब वास्तव में इससे, जैसे अभी आपने सुना कि शरीर का कोई भी अगर कॉन्स्टिपेशन या प्रॉब्लम होती है स्टमक की, तो रिलीज होने में इजी होता है, और अगर स्वच्छता नहीं है तो उसका ब्रेन पर भी असर पड़ता है, टेंशन भी होता है, हैवीनेस भी होती है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है, और जब स्वच्छता है तो मन की एकाग्रता भी है। तो वास्तव में देखा जाए तो शुचि शुद्धि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस मुद्रा को देखें, इस एक्सरसाइज को सोचें, तो बहुत गहरा संबंध है साधना का, सिद्धि का, तपस्या का, त्याग का, जो भी हम जो बेसिक सूत्र हैं अथवा मंत्र हैं, कनेक्टेड है ईच अदर। तो वास्तव में देखा जाए तो ये एक सीड है हर प्रकार की प्राप्ति का। पहला शब्द है स्वच्छता। स्वच्छ केवल बॉडी की स्वच्छता नहीं, वस्त्रों की स्वच्छता नहीं, परंतु एलिमिनेशन जो भी हमारे पास डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, टेंशन और फीलिंग है, उससे हम फ्री हुए। तो हम ये सोचे कि हमारे मन की वृत्ति, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में क्या ऐसी चीज है जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है और हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। अभी भी जब डाइजेशन नहीं होता है तो नेचुरली स्टमक एक होगा या फिर उसका अपोजिट होगा, वॉमिटिंग होगी, इम्पेशंस हो जाएगा इंसान। अब ये क्या मतलब है इसका? तो जैसे जब तक हमारे मन में स्वच्छता नहीं है, क्योंकि हम इधर उधर से व्यर्थ कोई उल्टी उल्टी बातें, इधर उधर की गॉसिप सुनते सुनते जो भोजन हमको नहीं खाना चाहिए वो हम खा लेते हैं, तो जैसे कभी भी टिन फूड, पुराना फूड खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे ही पुरानी पुरानी बातें, सड़ी हुई बातें, बहुत समय की वातावरण से इन्फ्लुएंस्ड हुई बातें अगर हम सुनते हैं तो हमारे जो मन की चित्त वृत्ति है वो शुद्ध नहीं रहती। क्यों? कि स्वच्छता का कनेक्शन ना केवल शरीर से स्वच्छ है, परंतु स्वच्छता का अर्थ हमारा मन, चित्त, बुद्धि, संस्कार भी स्वच्छ हो। स्वच्छता के बाद आती है शुद्धि। कोई भी चीज बाहर से उड़ती उड़ती आती है तो कहते जरा साफ कर दो, तो हम डस्ट आउट कर देंगे, झाड़ू लगा देंगे, परंतु शुद्ध करना है तो उसमें जल चाहिए। तो इसीलिए ज्ञान का जल चाहिए, शीतलता भी चाहिए तो शक्ति भी चाहिए। तो एक प्रवाह विचारों का, शुद्ध प्रवाह, जल का मतलब ही है कि विचारों का पॉजिटिव प्रवाह। तो मन में अगर हम शुद्ध विचार, पॉजिटिव विचार धारण करते हैं तो मन की शुद्धि, ऑटोमेटिकली हमारा मन एकाग्र होने लगता है, पर चिंतन से फ्री होकर स्वचिंतन, स्वस्थिति में स्थित होने लगता है। और उसका तीसरा स्टेप है, वो है शुद्धि के बाद है पवित्रता। पवित्रता महानता है, पवित्रता जीवन का चरित्र से संबंध रखने वाली है, पवित्रता हमारे व्यवहार और संस्कार से संबंध को प्रकट करने वाली है। और पवित्र देव को, मनुष्य आत्माओं को भी, महान आत्माओं को भी, योगियों को भी ऑटोमेटिकली भावना इतनी उनके प्रति होती है कि हम उनको नतमस्तक होते हैं, नमस्कार करते हैं, ऊंच समझते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी शक्ति है, वो लोअर पार्ट बॉडी से निष्क्रिय हो करके हमारी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी कर रही, ऊपर ले जा रही है, अपलिफ्ट कर रही है, रिलीज हो रहा है गंदगी और इंक्रीज हो रही है हमारी हृदय की स्वच्छता, मन की शुद्धि और बुद्धि की दिव्यता। इसको ज्ञान प्रकाश कहा जाता है। इसीलिए वास्तव में यादगार में, माइथोलॉजी में, कि ये जिस मुद्रा बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने जब अपना परिचय दिया था कि मैं अद्वितीय हूं, यूनिक हूं, तो उस समय सूर्य देव भी साथ थे और विश्वकर्मा जी। तो वास्तव में हमारे जीवन में एक श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ज्ञान प्रकाश शुद्धि चाहिए। तो इसीलिए जब हमारे पास किसी भी चीज की समझ है तो हमारी चित्त वृत्ति, निरोध करने की भी बात नहीं, नेचुरली अपने आप ही राइट डायरेक्शन पर चलने लगती है। चित्त में प्रभु चिंतन चलता है, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं उठने लगती हैं, और वो जो इस इसमें जब शुद्धि नहीं होती है तो एक बीमारी और इमर्ज हो जाती है, और वो बीमारी क्या है, क्लिंग करने की, डिपेंडेंसी, फियर, इनसिक्योरिटी। तो ऐसे इस मुद्रा से ये फायदा होता है कि इमोशनल फियर खत्म होना शुरू होता है, डर खत्म होना शुरू होता है, और ये है फिर मनुष्य आत्माओं से हम फ्री होने लगते हैं। पोजेसिव नेचर नहीं, इम्पेशंस नहीं, अधैर्यता नहीं, किसी भी प्रकार का कोई किसी के प्रति वैर विरोध नहीं। क्यों? कि जब पवनता है तो स्वच्छता, शुद्धि, पवित्रता, और फिर है पतित से पावन बनना। अभी मनुष्य आत्माओं ने इस गंदगी को, शरीर की जो गंदगी निकलती है उसको शुद्ध करने वालों को, साफ करने वालों को शूद्र कह दिया, पर वास्तव में नहीं। वो मेहनत की कमाई खाते हैं, वो शुद्ध करते हैं जो अशुद्धि हमारे शरीर से अपाचन के होने के कारण शक्ति को हम नहीं पचा सकते तो वातावरण को खराब करते हैं। तो ऐसे मन में भी शूद्र भाव उत्पन्न हो जाता है, बाकी शूद्र नहीं, अनटचेबल नहीं, अशुद्धि गंदगी अनटचेबल चीज है। इसलिए मैं सबको दूर रखना, तो मन के जो पर चिंतन, वैर विरोध, नफरत, अटैचमेंट, क्रोध, ये अपवित्रता है। और पवित्रता में क्या है, उसमें दिव्यता है। इसलिए सूर्य देव ब्रह्मा जी के साथ थे, तो ये दिव्यता है। ज्ञान के प्रकाश से अपने आप की चेकिंग होती है, जैसे सूर्य उदय होते ही, प्रकाश होते ही ये पता चलता है कि गंदगी कहाँ है, और उस गंदगी को, उस दाग को, उस कमजोरी को मिटाने का लक्ष्य मिलता है, समझ मिलती है। इसी प्रकार से हम इसी इस मुद्रा में हमेशा ऊपर उंगली होती है, इशारा ऊपर होता है। क्या मतलब है कि हमारा मन और बुद्धि एकाग्र हो, परमपिता परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुटा हुआ हो, और हम अपनी बुद्धि को बैलेंस में लाएं, शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि। हृदय एकदम दया भाव वाला, क्षमा भाव वाला, प्रेम का मंदिर बन जावे, तो मन को मंदिर बनाना है। ऐसी स्वच्छता चाहिए, ऐसी शुद्धि चाहिए। मंदिर में दिव्य मूर्ति बैठती है, रखते हैं, तो ऐसे मन में दिव्यता हम भरे, स्वस्थ शरीर की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता अगर है, तो भगवान के जो महावाक्य हैं, मन मना भव मद भक्तो, भक्त मन से मेरा हो जा, मन मेरे में लगा, तो मन ऑटोमेटिकली एकाग्र होने लगता है, और मन में प्रभु चिंतन मंथन होने लगता है, और विचार सागर दिव्य बन जाता है। तो जैसे कहते हैं, विचार सागर सागर मंथन हुआ तो रत्न निकले, सागर मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, सागर मंथन हुआ तो क्या कौन सा, ये जब मन की शुद्धि है, हम उसकी शुद्धि की गहराई में जाते हैं, तो वृत्ति भी पवित्र, दृष्टि भी पवित्र, क्योंकि दृष्टि में भी अशुद्धता आती है। नफरत क्या है, वैर विरोध क्या है, क्रोध क्या है, ये कोई आत्मा की दिव्यता और शुद्धि नहीं है, उनको कोई ऊंच देवता नहीं कहेगा, पर देवताओं की दृष्टि में कितनी दिव्यता है, कितना प्रेम है, कितना आकर्षण है। और फिर वही देवताएं दूसरी आत्माओं पर कृपा दृष्टि रखकर उनको भी पतित पावन की महिमा से, पतितों को पावन करने वाले दूसरों को भी पावन करते हैं। तो हृदय मन को बनाते हैं मंदिर, और फिर इस ग्रह को शरीर में स्वच्छता लाते हैं, तो नेचुरली बाकी गुण सारे हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आते हैं। तो गृहस्थ घर में रहते हुए इस ग्रस्त में रहते हुए पवित्र जीवन जीने से घर बन जाता है आश्रम। और जब आश्रम बन जाता है तो विश्वकर्मा जी क्या करेंगे? विश्वकर्मा जी तो ब्रह्मा जी के साथ नई सृष्टि रचेंगे। तो ब्रह्मा के द्वारा जो पवित्रता मिलती है, ब्राह्मण जीवन बनता है, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति मिलती है, तो वृत्ति भी पवित्र, संकल्प भी पवित्र, दृष्टि भी पवित्र, विचार, व्यवहार, संस्कार, तीनों चीजें पवित्र बन जाती हैं। क्योंकि जैसा चिंतन है वैसा ही चलन होता है, और जैसा चलन है वैसा चेहरा होता है। तो अभी आपने सुना कि जो इस मुद्रा को का अभ्यास करते हैं उनके चेहरे पर प्रकाश आ जाता है। ऑर्डिनरी मनुष्यों से उनका चेहरा तेजस्वी बन जाता है। क्यों? कि गंदगी निकल गई। अगर शरीर की गंदगी निकल गई तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन और ऑटोमेटिकली सिस्टम है वो उत्साह वाला रहेगा, उमंग वाला रहेगा। तो सोचिए मन की शुचि, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता और संस्कारों की दिव्यता इस सृष्टि पर कौन सी सृष्टि लाएगी? इस सृष्टि को देव भूमि, स्वर्ग भूमि बनाएगी। तो उस समय सिर्फ तन स्वस्थ नहीं, जब ये शुद्धि आ जाती है, पवित्र बुद्धि बन जाती है, तो तन की शुद्धि, तन तंदुरुस्त है। देवताओं की आयु लंबी होती है, निरोगी कंचन काया होती है। काया भी सुंदर और आत्मा भी सुंदर। तो तन निरोगी, मन एकदम शांत, शीतल, शुद्ध, दिव्य, मनोकामना पूर्ण करने वाला, मन की शुद्धि। फिर संबंध की शुद्धि, वो संबंध में मोहवश क्लिंग नहीं करते। ये मुद्रा सिखाती है कि आप पजेसिव नस्ते थोड़ा फ्री हो जाएंगे, इनसिक्योरिटी से सिक्योर हो जाएंगे। तो क्या मतलब है? कि हम संबंध में बंधन में नहीं रहते, संबंध में स्नेह भरा हुआ होता है, संबंध में एक दो के प्रति सहयोग और सद्भावना भरती है। तो मन की शुद्धि, तन निरोगी, मन शुद्धि, संबंध जो है वो सुखदायी है। प्रकृति, इसी प्रकृति का बना हुआ शरीर है, प्रकृति जो है वो दासी बन जाती है। यानी ऑटोमेटिकली इस प्रकार की शुद्धि प्रकृति में आ जाती है, जो प्रकृति से हर 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 चीज बिल्कुल ऑटोमेटिकली नियंत्रित रहती है, सिस्टम में सेट रहती है, तो निश्चिंत रहते हैं। तो ऐसी सृष्टि बनाएं, मन को बनाएं मंदिर स्वच्छता पवित्रता से, घर को बनाएं आश्रम दिव्य गुणों के मेल मिलाप से, हार्मनी से, और सृष्टि को बनाएं स्वर्ग। इसका नाम है शुचि, आध्यात्मिकता के भाव से। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कर्म, संबंध, सब में शुद्धि पवित्रता। ओम शांति, ओम शांति।
जीवन में शुचि लाने से, जीवन में शुचिता आने से, स्वच्छता आने से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीजें, जैसे शरीर स्वच्छ होता है तो चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है, एक चमक आ जाती है। वैसे ही अगर व्यक्ति के चिंतन में, व्यक्ति के व्यवहार में, उसके सोच में अगर शुचिता आती है, वहां पर स्वच्छता आती है, तो जीवन में वो चमक आने लगती है, जीवन में वो दिव्यता नजर आने लगती है। दोस्तों, आप में से कोई दीदी जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं किसी भी विषय पर, तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों को दीदी जी के समक्ष रखूंगा। अगर आप कोई फीडबैक ही लिखना चाहते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कोई सजेशन लिखना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। दीदी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। अगर हमारे मन को अगर हम शुद्ध करना चाहते हैं, शुचि का भाव मन में ले आना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? क्योंकि बहुत बार लगता है, पता चलता है कि मन में बहुत सारा कचरा है, बहुत सारी गंदगी है, तो उसे हम साफ करें तो कैसे साफ किया जाता है?
मन में जो किसी भी प्रकार का व्यर्थ आ जाता है तो उसको स्वच्छ करने की विधि, कुछ भी कैसे साफ करें, तो मन को परमात्मा कहते हैं पहले मेरे में लगाओ। स्वच्छ अस्वच्छ क्यों हुआ? क्योंकि हमने बाहर की जो कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं उनको बाहर मुखी बनाया है, तो हमारी जो एनर्जी जो व्यर्थ है, व्यर्थ न्यूज है, व्यर्थ देखना है, दोष देखने का है, दूसरों को बोलने के क्रिटिसिज्म और कमेंट कर करके गिल्टी फील कराने का, यानी उसमें क्या है कि हम समझ रहे हैं हम दूसरों के दोष को दूर कर रहे हैं, परंतु हमको ये नहीं पता चलता कि उस दूषित वातावरण में हम अपने मन को दूषित कर रहे हैं। अब वो करें निकले कैसे? इसका मतलब यही हुआ कि बाहर मुखी का दरवाजा, यानी हम बाहर मुखता में आ गए, एक्सट्रोवर्टेड बन गए, एनर्जी हमारी अननेसेसरी इचरा बाहर का हमारे पास आया, तो पहले तो उसका दरवाजा बंद करें और फिर एकाग्रता से मन में पॉजिटिव एनर्जी, थिंकिंग को पॉजिटिव बनाए। कोई बात अगर किसी ने कही है तो वो मेरे, अगर मुझे पसंद नहीं है तो वो मेरे लायक नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, तो मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूं, अपनी वैल्यू को समझे। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी शांति भंग हो रही है, मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो उसमें अपना मित्र बन जाए। क्योंकि जो व्यर्थ बातें होती है, जो मन में किसी के प्रति हमारे दोष भावना आती है, तो ऑटोमेटिकली हम उनसे दूर हो जाते हैं, उनकी कमियों को पॉइंट आउट करने लग जाते हैं, उनके वातावरण को छोटी बात को बड़ा बना के बोलते हैं। इसका मतलब गंदगी वातावरण में फैलाई। तो क्या करना है? अंतर्मुखी होकर के पहले चेक करें कि व्यर्थ क्या आ गया है, उस व्यर्थ को मुझे साफ करना है। ये मटका है, पुराने जमाने में मिट्टी का मटका होता था, ठंडा जल रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, ऐसे नहीं कि तीन चार दिन का पानी भरा रहे, नहीं, रोज मटके को अच्छी तरह से साफ करते थे और फिर फ्रेश पड़ते थे, तो उस जल में ताकत होती थी, उस जल में न केवल स्वच्छता होती थी, उसमें एक नई एनर्जी महसूस होती थी। तो अपने अंदर फिर से रिजुविनेट करें अपने आप को, न केवल क्लीन करें, न केवल रिजेक्ट करें, न केवल उसको ये हमारे काम करना या उसको अवॉइड करें, परंतु रिजुविनेट करें। क्योंकि गंदगी है तो बाहर फेंकेंगे ना, क्योंकि अगर ये बड़ी जरूरी बात समझने की है, इससे मन भारी हो जाएगा, बुद्धि हमारी जो है वो निर्णय शक्ति मेरी जो है वो बायस हो जाएगी और डीप डिटैच ऑब्जर्वर नहीं हो सकूंगा। इसलिए मुझे अपने साथ मित्रता है, मैं अपने समय को वैल्यू कर देता हूँ, मैं अपने आप की शक्ति को ठीक रखना चाहता हूँ, इसलिए परचिंतन पतन की जड़ है, खाई है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। वो मन खराब तब होता है जब पर चिंतन होना शुरू हो जाता है, तो वो पच नहीं सकता ना, क्योंकि वो बेकार का फूड है, जंक फूड है, वो पचेगा कैसे? वो तो बीमारी करेगा। इसलिए मैं बीमार नहीं होना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। तो स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना, शुद्ध रहना, जब हमको अपने से प्रीत हो, मैं आत्मा अपना मित्र हूँ, मैं आत्मा अपना शत्रु हूँ, मैं शत्रु नहीं बनना चाहता, ना दूसरे का शत्रु बनूं, ना अपना शत्रु बनूं, सबसे मैत्र भाव में रहे, उसके लिए तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, हर प्रकार की शुद्धि चाहिए। और फिर मन का योग परमात्मा से अगर नहीं निकलता है, इसी प्रकार का कोई भी कर्म, पाप कर्म से हमारा मन दुखी हो गया है, कर्म से जो मन से जाता नहीं है, पश्चाताप होता है, उसके लिए फिर परमपिता परमात्मा के आपके साथ योग की शक्ति चाहिए, सूर्य की शक्ति चाहिए। परमात्मा ज्ञान सागर है तो उस अलग प्रकार की स्वच्छता है, और सूर्य है शक्ति जो है वो दूर होते भी कीटाणुओं को भस्म करता है और साथ साथ एनर्जी देता है, और अपने आप को फिर बीज रूप में स्थित हो जाओ, समेट लो सब बातों को। मेरी एनर्जी व्यर्थ चिंतन में वेस्ट हो रही है, मैं सीड स्वरूप हूँ। तो जैसे परमात्मा बीज रूप भी है, सूर्य भी है और सागर भी है, जब हम अपनी इमेज को भी इसी प्रकार सामने रखेंगे तो हम भी पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी हमारे में होगी, और हम उसी प्रवाह में सागर किसी की गंदगी गंगा की गंदगी भी लेके भी निकाल देता है और सागर अपने समान बना लेता है। इसीलिए सागर भी बन जाए, मास्टर सागर बन जाए, ज्ञान सागर मास्टर सूर्य बन जाए और मास्टर बीज रूप बन जाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, जैसे आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया सागर का, और आज हम वर्ल्ड ओशंस डे भी मना रहे हैं, आज विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, और यही याद दिलाते हैं कि मन के अंदर सारी चीजें परमात्मा समा लेते हैं और सागर को सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। एक और हमारे दोस्त हैं जो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, राधे कृष्ण नाम है इनका, और ये प्रश्न पूछते हैं कि जॉब रिलेटेड स्ट्रेस जो होता है उससे हम कैसे फ्री हो सकते हैं। कभी कभार जॉब्स में जब काम करते करते बहुत स्ट्रेस हो जाता है तो उससे हम अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं, ये प्रश्न है।
स्ट्रेस वास्तव में है क्या, स्ट्रेस पूछा ना? अभी वास्तव में स्ट्रेस क्या है थोड़ा अपने आप से पूछें। तो मैंने पहले से उसको बहुत बड़ी चीज समझ लिया, जो मुझे कार्य करना है ना भाई, मुझे उस जैसे मैं उसको अभी डेट डेडलाइन आ गई है, डिमांड्स बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, फियर है कि मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरा जॉब ना छूट जावे, नहीं पूरा करूंगा बच्चे कैसे प्रसन्न होंगे, घर कैसे चलेगा, तो हमने फियर का दरवाजा खोल दिया। अभी स्ट्रेस में क्या, पहले ही अगर हम अपने आप को जो परिस्थिति है उसको हमने अपने अंदर अगर समा लिया तो हमको एक्स्ट्रा न केवल जो मेरे को मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने दूसरों की प्रॉब्लम भी अपने अंदर रख ली। अब इतनी सारी ये इसी का नाम है स्ट्रेस, यानी मैं उसको ले एक्स्ट्रा मोर देन व्हाट माई कैपेसिटी इज वो मैंने लिया। पर वास्तव में देखा जाए तो आत्मा की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है। मैं जब दुनिया से कंपेयर करने लगता या फियर है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब है अपनी अंदर की आत्मा की कैपेसिटी जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से मिलती है उसका डोर मैंने बंद कर दिया है। मैं अकेला वो काम करना चाहता हूं, कोई मदद नहीं करता है, कोई सहयोग नहीं दे रहा है, तो मैं दूसरों से भी इतना सहयोग ले सकता हूं। तो मेरी अगर मैं रिलैक्स हूं, एकदम लाइट हूं, तो मुझे दूसरे ऑटोमेटिकली मदद करेंगे। दूसरों को मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे काम है मेरी सिचुएशन में, मैं उनको कोऑपरेट करता हूं, मेरे को कोऑपरेट करेंगे। तो बाहर की परिस्थिति में मेरे को दूसरे मदद करेंगे अगर मैं रिलैक्स्ड हूं तो। अगर मैं टेंस हूं तो टेंस से टेंशन में दूसरे को वाइब्रेशंस आते हैं और वो फिर हमको हेल्प भी करेंगे तो मर्सी से करेंगे, पिटी समझ करके करेंगे, वो हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती। इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट क्रिएट करना चाहिए, करेज करना चाहिए, कॉन्फिडेंस हो जाएगा फिर उसमें भी। फिर ये आध्यात्मिक बल भरने के लिए अकेला काम नहीं करना, मैं अकेला करने वाला नहीं हूं, मेरे साथ समय का सहयोग है। पहले क्या हुआ वो पीछे रही बात, अब ये सीजन है, समय का सहयोग है, स्वयं की दृढ़ता का निश्चय का सहयोग है, और परमपिता परमात्मा का सहयोग है तो परिस्थिति ऐसी आएगी, चेंज हो जाएगी, जिसमें ऑटोमेटिकली वही जॉब जो मुझे अकेले करना है वो अनेक मेरे साथ करने वाले बन जाएंगे। या फिर मैं मुझे ही करना है तो जॉय से करना है, पहले अपने आप को नहीं मैं कर सकता हूँ, करण कारवार हार मेरे से करवाएगा, समय मेरे से करवाएगा जरूर, मेरा भाग्य मेरे से ये मेरी मेरा टेंशन दूर करेगा जरूर। परमात्मा की महिमा है, दुख हरता सुख करता, तो टेंशन तो मैंने अपने आप उठाया है ना, इसलिए मैं अपने आप नहीं कर सकता हूँ तो वो भी उसको दे दो, तो फिर निकल जाएगा। पर लापरवाह नहीं बनना है, रहना एक्टिव है, परंतु उसमें पहले कॉन्फिडेंस, करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये क्वालिटीज को भर के रखेंगे तो फिर वो परिस्थिति में जो टेस्ट लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, पास होना है और या ना एक्सरसाइज है, पर जिनको अच्छी एक्सरसाइज करनी होती है तो वो तो और ही उसके पास है। ऐसा होता है जैसे देखने में स्ट्रेस लगता है, दूसरों को स्ट्रेस लगता है, उनको गेम लगता है, तो खेल खेल में खेलना शुरू कर दे, ट्राई करके देखे, मुश्किल आसान हो जाएगा। इसलिए एक बहुत सुंदर गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और खुदा कहता है तू मास्टर ऑल माइटी है, मैं तेरे को शक्ति देता हूँ, तू मेरे से भी बढ़िया काम करेगा क्योंकि तू तो साकार में सफलता तुमको प्राप्त करनी है, तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक शब्द में है पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइटनेस, कंधे पर उठा के स्ट्रेस नहीं रखना है, स्ट्रेस है पर मेरे काम में इंटरेस्ट मुझे है तो स्ट्रेस नहीं है, गेम है तो स्ट्रेस नहीं है, मैं हीरो हूं तो स्ट्रेस नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी क्रिएट करके फिर कर्म कर और परमात्मा को साक्षी बना के काम करें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने बताया कि कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है, और ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हम अपने आप को लाइट बना के रखें, हम पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें तो स्ट्रेस को बेहतर डील कर सकते हैं। दीदी आप इतने समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमारे साथियों को आज शुचि के बारे में बोध कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद, थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगता है अपने भाई बहनों से मिलना और जो बातें परमात्मा से मिली है, अनुभव में आई है, वो शेयर करना।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम बात कर रहे थे राजयोगिनी सुदेश दीदी जी से, जो ब्रह्मा कुमारी की यूरोपीय देशों की निदेशिका है, हाल फिलवक्त वो लंदन से हमारे साथ सीधे जुड़े थे, और आज के पतंजलि के सूत्रों के दूसरे दिन जो दूसरा नियम हमें बताया गया है वो है शुचि, और शुचि के बारे में हमने जानकारी हासिल की। मैं समझता हूँ सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस योग सूत्र को समझा है, और अलग अलग नियमों के बारे में जब हम जानकारी देते हैं तो आज का ये नियम है वो है शुचि, स्वच्छता हमारे लिए कितनी आवश्यक है। हम सबको स्वच्छता हमारे आसपास पसंद आती है, हम जहां देखते हैं वहां चीजों को स्वच्छ रखना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन को स्वच्छ रखने से हमारा जीवन अच्छा रहता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, जीवन में खुशहाली आती है। ये सारी चीजें आज सीखने को मिली हैं, और उसे कैसे करना है, मन को स्वच्छ कैसे करना है, उसके बारे में भी हमने सुदेश दीदी जी से आज के बोध में जानकारी ली। तो दोस्तों आखिरी हिस्से में हम आते हैं कार्यक्रम के, आखिरी हिस्से में आखिरी 5 मिनट में हम अब करते हैं योग का आखिरी आयाम, जिसे हम राजयोग कहते हैं यानी ध्यान मेडिटेशन कहते हैं। तो आइए ध्यान मेडिटेशन करते हैं, राजयोग को सीखते हैं। अगर आप आज पहले दिन जुड़ रहे हैं तो भी किसी बात की चिंता नहीं, हम जहां भी बैठे हैं वहां बैठकर इसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। एक गाइडेड मेडिटेशन होगा, हम सबसे ये गाइड करते हुए करवाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जा रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं राजयोग मेडिटेशन के लिए। Thank you.
सब एक योग अभ्यास की यात्रा पर चलते हैं। पहले अपना मन और बुद्धि का ध्यान बाहर की सब बातों से, सब नजारों से, जो भी आवाज, उन सब से अपने मन और बुद्धि का ध्यान दूर करते जाएं। बाहर की बातें जो है जैसा है उसे हम स्वीकार करके अपना ध्यान अंतर मन की ओर मोड़े। गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। जब श्वास लेते हैं अपना ध्यान मस्तिष्क के ऊपर लेके जाएं। और जैसे ही ध्यान जाता है उस अंग में अगर कोई भी तनाव होगा, दर्द है, अपने मन से उसको शांत और शीतल का संकल्प दें। और जैसे कि वो अंग बहुत हल्का होता जा रहा है, शीतलता आ रही है, जो भी बोझ या तनाव था उससे हल्के होते जा रहे हैं, इतना हल्का जैसे कि कुछ है नहीं। अभी हम अपना ध्यान चेहरे के हर अंग पर, आंखें, नाक, कान, मुंह, हर एक अंग पर ध्यान दें। और जैसे ही हम ध्यान देते हैं उस हर एक अंग में अगर कोई भी दर्द है, तनाव है, कुछ भी है, हम उसे शांति और शीतलता के प्रकंपन से उसको हल्का करते जाएं। इतना हल्का जैसे कि रुई है। अभी हमारा ध्यान गले पर, कंधों पर और एक एक अंग जैसे कि शांत और शीतल, जो भी बोझ है कंधों पर वो हल्का होकर गुम हो रहा है। दोनों बाहें, दोनों हाथ, छाती, पीठ, पेट, सब अंग में शीतलता की प्रवाह हो रहा है। कोई भी बोझ, दर्द, कुछ भी हो, उस शीतलता की प्रवेशता से आराम की महसूसता हो रही है। बाकी सब व्याधियां दूर होते जा रहे हैं। इतना दूर जैसे कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होता। अभी हम अपना ध्यान दोनों पैरों पर, तो सिर से लेकर पांव तक हर अंग में शीतलता और शांति की प्रकंपने पहुंच रही है। और कोई भी तनाव, दर्द, हलचल शांत हो रहा है। पूरा शरीर एकदम हल्का, जैसे कि कोई वजन ही नहीं, जैसे कि है ही नहीं। बचा क्या? जो अदृश्य है, सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य शक्ति है, आत्मा। उस चैतन्य अदृश्य शांति की शक्ति का अनुभव करें, जो आप हैं। ना ध्यान जब हम अपने मन के अंदर डालते हैं तो मन में बहुत सारे संकल्प होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, बहुत सारी बातों का संकल्प उत्पन्न होता है। जो बीत गया, अगर हम उसके बारे में विचार करते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो संकल्प बोझ वाला संकल्प भी बन सकता है। तो आज अपने मन को हल्का करने के लिए, अपने मन को जो भी पहाड़ जैसी परिस्थिति बीत गई उसको राई बनाकर, रुई बनाने के लिए एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि जो बात बीत गई, जो दृश्य इस ड्रामा में बीत गया, उसे मैं साक्षी होकर देखूं और अपने आप से पूछूं कि मैंने इससे क्या सीखा। जब सीख स्पष्ट हो जाता है, जो वो फिर वो दृश्य बोझ वाला नहीं लेकिन एक सीख के समान मन में रह जाता है, हमको सुकून की नींद भी आएगी, संबंध अच्छे भी बनेंगे, भावनाएं सकारात्मक और श्रेष्ठ होगा। सबसे बड़ा फायदा खुद को होगा। तो ये क्षण हम वही करें, जो बीत गया वो बीत गया, मन ने उन सब बातों को बिंदु लगाकर, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप स्थित होकर उस निराकार बिंदु परमात्मा की याद में अपने अंदर उस शांति की शक्ति को ग्रहण करूं। हम उनके संतान हैं, सब बोझ उस परमात्मा को देकर खुद हल्के फुलके, जैसे प्रकाश स्वरूप है, उसे लाइट बनकर अपना हम जीवन व्यतीत करें। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद किन्नरी दीदी का, जिन्होंने हम सबको राजयोग की बहुत ही सुंदर अनुभूति कराई, लाइटनेस को फील करना सिखाया कि हम बहुत बार बहुत सारे बोझों को अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। जैसे सुदेश दीदी ने भी आज इस चीज पर हमें बोध करवाया कि सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके हम अपने आप को लाइट बना सकते हैं, एक हल्का जीवन जी सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, और इसके लिए मेडिटेशन ये प्रैक्टिस करवाया। और मैं आशा करता हूं आप सबको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहा होगा। कल भी हमारे साथ जुड़ना न भूलें 21 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चैलेंज के लिए, जहां पर हर दिन हम संपूर्ण योग को सीख रहे हैं, योग के अलग अलग एस्पेक्ट्स को सीख रहे हैं और लाइफ में उसे अप्लाई करना सीख रहे हैं। कल होगा एक नया योगासन, साथ में नया बोध और फिर एक नया मेडिटेशन। तो कल इसी वक्त शाम को 6 से 7 बजे के बीच में हम आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट्स लिखना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, YouTube या Facebook पर, दोनों ही जगह से हम आपके कमेंट्स को जरूर लेंगे। तो आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिए अपना बेहतर ख्याल और फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।